हरे कृष्ण। जैसा आप सब जानते हैं कि उपदेश अमृत श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस्कॉन के भक्तों के लिए चार किताबें काफी हैं और ये चार किताबें भक्ति शास्त्री में पढ़ाए जाते हैं। एक है भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है ईशोपनिषद और चौथा है उपदेशामृत। वैसे यद्यपि उपदेशामृत एक बहुत प्राथमिक ग्रंथ माना जाता है, ये केवल नए भक्तों के लिए नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे, यह जो चर्चा रूप गोस्वामी पाद ने की है वो प्राथमिक भक्तों से लेकर प्रेमा भक्ति की अवस्था में जो भक्त हैं उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है, उनके लिए भी उन्होंने ज्ञान दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उपदेशामृत का विश्लेषण किया है, उन्होंने टीका भी लिखी है इसके बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर के टीका के अनुसार पहले श्लोक की चर्चा शुरू करने के पहले हम उपदेशामृत की सूची देंगे। अभी तो पहला श्लोक जो है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बंगला में टीका है, त्रिदंडी स्वामी लक्षण। ये श्लोक जो है इसमें त्रिदंडी स्वामी का लक्षण पाया जाता है। दूसरे शब्दों में एक आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण है ये, जो पहले श्लोक में पाए जाते हैं। दूसरा श्लोक है अत्याहार्ह प्रयासश्च, इससे शुरुआत होता है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति प्रतिकूल षड गुण, ऐसे छह चीजें हैं जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, हानिकारक हैं। इनका वर्णन इस दूसरे श्लोक में पाया जाता है। तीसरा श्लोक है उत्साह निश्चया धैर्या इत्यादि, और इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति अनुकूल षड गुण, वो छह चीजें हैं जो हमारे भक्ति के लिए बहुत अनुकूल हैं, लाभदायक हैं, इनका वर्णन है। चौथा श्लोक है ददाति प्रतिघृणाति इत्यादि, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक में वर्णन है षड्विध प्रीति लक्षण। भक्तों के बीच में प्रेम के आदान प्रदान के छह तरह तरीके या छह प्रकार। तो दूसरे तीसरे और चौथे श्लोक में मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम का पालन, ये विषय है। एक मध्यम अधिकारी गोस्वामी किस तरह व्यवहार करते हैं बाहरी दुनिया के साथ, और ऐसे गोस्वामी के नियम पालन कैसे होते हैं, इनका वर्णन ये तीन श्लोकों में है। ठीक है, फिर पांचवा छठा सातवा और आठवा। पांचवा श्लोक है कृष्णेति इति इत्यादि। मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवन, मध्यम अधिकारी किस प्रकार से, किन तीन प्रकारों से वैष्णवों की सेवा करता है, इसका वर्णन है। फिर छठा श्लोक शुरुआत होता है दृष्टे ही। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अप्राकृत वैष्णवे प्राकृत दृष्टि निषिद्ध। वैष्णव वो अप्राकृत होता है अर्थात आध्यात्मिक होता है, वो इसका लेना देना इस दुनिया से नहीं रहता। तो एक मध्यम अधिकारी व्यक्ति को कभी भी एक वैष्णव को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए या प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मानो ये इस जाति का है और उस ऐसे सामाजिक परिस्थिति से आया है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, तो ऐसे प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सातवां श्लोक है सियात कृष्ण नाम इत्यादि। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वर्णन है कि अविद्या विनाश ओ कृष्ण नामे रुचि अनुशीलने प्रणाली। उस प्रणाली का वर्णन है जिससे कि हम अनुशीलन कर सकें। किन चीजों का? इन चीजों का कि अविद्या का विनाश कैसे हो और कृष्ण नाम में रुचि कैसे उत्पन्न हो। तो ये सातवें श्लोक का विषय है। और आठवां श्लोक तन्नाम रूप चरितार्थ कीर्तनानु इत्यादि। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री व्रज भजन प्रणाली। वृंदावन में रह के क्या भजन हमें करना चाहिए, इसका वर्णन है यहाँ पर। एक कैसे जो सच्ची बाबा जी होते हैं, जो बाबा जी रह के बन के रहना चाहते हैं, हालांकि हम तो सलाह नहीं देंगे कि ऐसे कोई प्रयत्न करे। अनेक भक्तों ने प्रयत्न किया है प्रभुपाद के छत्र छाया से बाहर जाके, ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहाँ प्रभुपाद जी के संस्था के छत्र छाया में है तो वही ठीक है, परंतु वृंदावन के भाव में अवश्य हम बंबई, कलकत्ता, दिल्ली जहाँ भी हम हों वहाँ रह के हम भजन कर सकते हैं। तो ये पांचवा, छठा, सातवा और आठवा श्लोक, ये चार श्लोक जो हैं इनमें विषय है मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि एवं आंतरिक विकास। आपको याद होगा कि दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन क्या था, मध्यम अधिकारी का बाह्य व्यवहार और नियम पालन। और अब इसके बाद वाले जो चार श्लोक हैं इसमें मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि कैसे होती है और उसका आंतरिक विकास कैसे होता है, ये वर्णन है। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कितनी अच्छी तरह से वर्णन विश्लेषण किया है इस ग्रंथ का। ताकि हमें ग्रंथ की पढ़ाई शुरू करने के पहले एक पूरी दृष्टि मिल जाती है अच्छी तरह से। नौवां श्लोक वैकुंठा जनितो से शुरू होता है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ। जो भजनीय स्थल है, भजनीय अर्थात हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए आदरणीय, प्रशंसनीय, ऐसे स्थलों में से अनेक स्थल हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ भजनीय स्थल कौन सा है, इसका वर्णन रूप गोस्वामी इस नौवें श्लोक में करते हैं। दसवें श्लोक में जो कि कर्म फिर पारतो इत्यादि से शुरू होता है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वर्णन है कि भजन कार्य मध्य सर्वश्रेष्ठ। नौवें श्लोक में यह बताया गया था कि भजनीय स्थलों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, और इस दसवें श्लोक में बताया जा रहा है कि भजन करने वाले लोगों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो इन दो, नौ और दस, ये विषय है आराध्य स्थल एवं व्यक्तियों की श्रृंखला। और फिर अंतिम श्लोक 11 कृष्ण शोचनीति से शुरू होता है। राधा कुंड स्नान सौभाग्य पराकाष्ठा, कि राधा कुंड में स्नान करना ये कितनी ऊंची बात है, राधा कुंड की महिमा क्या है, इसका वर्णन इस अंतिम 11वें श्लोक में है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ महिमा ये राधा कुंड की है। तो शुरुआत करके जो इंद्रियों को वश में करना है पहले श्लोक में, उसे आगे बढ़ते बढ़ते श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड की चर्चा तक रूप गोस्वामी इस एक ही ग्रंथ में, छोटे से ग्रंथ में जिसमें केवल 11 श्लोक हैं, इसमें करते हैं। तो देखिए रूप गोस्वामी ने कितने विषयों की चर्चा की है, शुरुआत से लेकर सबसे ऊंचे स्तर की चर्चा रूप गोस्वामी बाद में की है। रूप गोस्वामी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उपदेशामृत तो है ही, साथ साथ भक्ति रसामृत सिंधु ये बहुत प्रसिद्ध है, विदग्ध माधव और ललित माधव ये दो नाटक हैं ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, उज्ज्वल नीलमणि ये भी बहुत एक विशेष ग्रंथ है जिसमें रस आदि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, दान केली कौमुदी पद्यावली ये सब प्रार्थनाएं हैं, रत स्तभ माला तरह तरह के स्तभ हैं इसमें, राधा कृष्ण गणोत्देश दीपिका लघु एवं बृहत दोनों, मथुरा महिमा लघु भागवतामृत और अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। केवल प्रमुख ग्रंथों के नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वृंदावन में रह के उनको शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों का जो निचोड़ है वो प्रस्तुत करना है ग्रंथों के रूप में, और ये साबित करना है कि शास्त्रों का निचोड़ ही कृष्ण भक्ति है। साथ साथ कृष्ण भक्ति कैसे की जानी चाहिए, कृष्ण भक्ति क्या चीज है, कृष्ण तत्व कौन क्या है, ये सारी चीजें भी गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में लिखी है बताई है। साथ साथ उनको उन्होंने ये भी बताया था कि कृष्ण लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करना था, वैष्णव का आचार कैसे होना चाहिए, रहन सहन कैसे होना चाहिए, पूजा आदि कैसे होनी चाहिए, इसका भी वर्णन उन्हें करने के लिए बताया गया था। साथ साथ में हरि नाम का प्रचार करना मंदिरों की स्थापना करके, तो ये सारे उपदेश या आदेश चैतन्य महाप्रभु ने षड् गोस्वामियों को दिए थे। इसलिए रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों ने अनेक ग्रंथ लिखे, इसकी ये कोई बात नहीं। रूप गोस्वामी तो आमुख प्रीफेस, इसका सार केवल हम कहते हैं, आमुख का पढ़ चुके हैं संक्षेप में, केवल आमुख, आमुख मतलब प्रीफेस, आप में जो अंग्रेजी जानते हैं, इसमें जो मुख्य बातें हैं हम यहाँ इनका सारांश हमने केवल बनाया है। पहली बात जो प्रभुपाद जी कहते हैं आमुख में वो ये है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझने के लिए हमें 6 गोस्वामियों का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। कृष्ण भावनामृत में प्रकृति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आमुख में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हमारे लिए रूप गोस्वामी प्रधान आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, इसलिए हम सबको क्या कहते हैं, रूपानुगत। रूप अनुगत, अनुगत मतलब जो अनुगमन करते हैं, जो पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात पद चिन्हों में चलते हैं, उनको अनुगामी कहते हैं। तो अनुगत और रूप, तो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलने वाले। रूप गोस्वामी प्रमुख आचार्य माने जाते हैं हमारे संप्रदाय में। अभी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि रूप गोस्वामी के भाई कौन थे? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी उनसे बड़े थे आयु में या छोटे थे? बड़े थे। फिर भी सनातन गोस्वामी का महत्व तो अवश्य है ही, परंतु हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य रूप गोस्वामी क्यों कहलाते हैं, सनातन गोस्वामी क्यों नहीं? आप में से कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो ज्ञान में बड़े थे। सनातन गोस्वामी तो बराबर के थे, कोई कमी नहीं थी।
बहुत सारे टीचिंग से थे ना,
भक्ति के संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे उपदेश रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट में दिए, परंतु केवल 10 दिन के लिए दिए। सनातन गोस्वामी को 2 महीने के लिए वाराणसी में उपदेश दिए। रूप गोस्वामी ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु का आश्रय स्वीकार किया। हाँ, एक दृष्टि से अपने घर छोड़ के वो आए महाप्रभु के पास, लेकिन जब शरण आए थे तो दोनों एक साथ में आए थे राम के लिए, रूप और सनातन। दोनों ने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय उसी समय स्वीकार किया। हाँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वकदातिकम्। क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात जानते थे, इतने निकट की बात है, ये सही है परंतु संपूर्ण नहीं है। ठीक है कि रथ यात्रा के समय जो चैतन्य महाप्रभु श्लोक कहा करते थे, उनका आंतरिक तात्पर्य केवल रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर को पता था, और वास्तव में महाप्रभु ने स्वयं नहीं कहा, ये हरिदास ठाकुर ने कहा। जब चैतन्य महाप्रभु ने आश्चर्य व्यक्त किया कि रूप को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपकी कृपा इनके ऊपर आई है, इसलिए आपके हृदय की बात वो जानते हैं, आपने शक्ति का संचार इनके हृदय में किया है। ठीक है, वो वही बात है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम की बात है, बात सही है, लेकिन और आगे
हिंदी
में
रूप मंदिर
रूप गोस्वामी मंजरी है, रूप मंजरी सनातन गोस्वामी भी मंजरी है, लेकिन दिशा सही है। अच्छा, उत्तर हम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी क्या अकेली है? नहीं, उनके साथ में कौन है? अनेक गोपियां हैं। जो उनकी सहायता करती है। उन सखियों में से, गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ललिता सखी। और ललिता सखी क्या अकेली है? उनकी सहायता करने के लिए और बहुत सारे मंजरिया, उनमें से प्रमुख कौन है? रूप मंजरी। और वही रूप मंजरी अभी रूप गोस्वामी बन के आए हैं, इसलिए उनको प्रधान आचार्य माना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ ये भी बात हमें समझनी है कि राधा कृष्ण को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हमें जाना है। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को समझने के बाद ही हम राधा कृष्ण तत्व को जान पाएंगे और राधा कृष्ण की सेवा सही तरह से कर पाएंगे और अंततः परिपूर्णता प्राप्त करके उनकी लीलाओं में प्रविष्ट हो पाएंगे। तो राधा कृष्ण चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास कैसे जा सकते हैं? छह गोस्वामियों के माध्यम से। छह गोस्वामी उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। चैतन्य महाप्रभु ने अधिक कुछ ग्रंथ लिखे नहीं, केवल शिक्षाष्ट का व्याज श्लोक है जो उन्होंने स्वयं लिखे, और अन्य जितने भी उपदेश हैं चैतन्य महाप्रभु के उनके शिष्यों ने लिखित रूप में हम सबके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो छह गोस्वामी और गोस्वामी हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को उनके ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, इसलिए इन छह गोस्वामियों के द्वारा हम महाप्रभु को समझ सकते हैं। और छह गोस्वामियों में से प्रमुख रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, ये श्रृंखला है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए रूप गोस्वामी बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे हमने बताया था कि उपदेश अमृत न केवल नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है, परंतु प्रेमा भक्ति के झलक, प्रेमा भक्ति की अवस्था के झलक भी हमें इस ग्रंथ में मिलती है। साधन भक्ति, वैधि भक्ति, सब कुछ इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और अंत में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। ये अंतिम जो वाक्य है मेरे ख्याल में एक ऐसा वाक्य है जो हम सबको कंठस्थ करना चाहिए, हर एक भक्त को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, जो भी हो। अंतिम वाक्य कौन सा है, कोई पढ़ेंगे? कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। आप में से पांच भक्त एक के बाद एक इसी एक वाक्य को आप पढ़िएगा।
जोर से, कृष्ण भावना अमृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है।
कृष्ण भावना अमृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती
है। और एक कोई?
कृष्ण भावना अमृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है।
मनोवृत्ति अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं, हमारी मनोवृत्ति कैसी है इसके ऊपर हमारी प्रगति होगी। यदि हमारी मनोवृत्ति ठीक नहीं है तो प्रगति नहीं कर पाएंगे भक्ति में। यदि मनोवृत्ति अनुकूल है, सही है, तो हमारी प्रगति तेज गति से होगी। तो कल तक आप ये एक वाक्य कंठस्थ करेंगे, ठीक है? जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, ये एक वाक्य अवश्य आप कंठस्थ करिए। ज्यादा कठिन नहीं, एक ही वाक्य है, ठीक है? आप करेंगे? अच्छा, तो इसका क्या मतलब है ये मनोवृत्ति क्या चीज है, अनुकूल मनोवृत्ति भक्ति के लिए क्या है और प्रतिकूल मनोवृत्ति क्या है, आपको उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हमारी मनोवृत्ति अनुकूल हुई तो भक्ति में प्रगति अच्छी तरह से हो पाएगी। तो अनुकूल मनोवृत्ति के उदाहरण आप दे सकते हैं कोई? हाँ,
जो भी कार्य हम करते हैं कृष्ण भावना में, वो कृष्ण से संदर्भ संबंधित होना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रियों की संस्कृति।
हाँ, हम जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं। ये एक मनोवृत्ति है। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं परंतु कृष्ण से इंद्र तृप्ति चाहते हैं, मांगते हैं हमें इंद्र तृप्ति दीजिए, धन दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, तो फिर प्रगति इतनी अच्छी तरह से नहीं होगी। और दूसरा कोई उदाहरण?
हमने हमेशा वैष्णव के दासानुदास
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, ये मनोवृत्ति, कि यदि वैष्णव भक्ति के पथ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि वो वैष्णवों के दासों का दास है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने सिखलाया है, गोपी भक्त पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के जो भर्तु हैं, गोपियों के स्वामी हैं कृष्ण, गोपी भर्तु कृष्ण, तो कृष्ण के दास दासानुदास, ये हमारा स्थान है। तो जो अपने आप को वैष्णव के दासानुदास समझता है वो अच्छी तरह से प्रगति कर पाएगा, लेकिन जो अपने आप को बॉसानुबॉस समझता है वो प्रगति नहीं कर पाएगा। बाहर की दुनिया में हमें क्या सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपना प्रभुत्व जमाना चाहिए सबके ऊपर, परंतु भक्ति में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें नम्र बनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मनोवृत्ति है। और कोई अनुकूल मनोवृत्ति के उदाहरण?
हाँ, जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सेवक निजी सेवक थे गोविंद, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु का शरीर को मसाज मालिश करने के लिए तो कैसे हमारा महाप्रभु ऊपर से गए लेकिन वापस नहीं आए, उनको महाप्रभु ने बाकी पूछा कि आप वापस क्यों नहीं ऊपर से चले गए, तो उन्होंने बोला कि आपकी सेवा के लिए मैं आपका शरीर को लान सकता हूँ लेकिन
हाँ। तो ये एक उदाहरण है, वही बात है जो पहले कही गई थी कि हम जो भी करते हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, न कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए। और कोई बात नहीं? बात हाँ,
जो भी कृष्ण भक्तों के साथ करते हैं, अच्छा या बुरा हो, भक्त सोचता है कि वो बहुत अच्छा।
हाँ, तो जो भी हमारे ऊपर बीतता है, तथा कथित अच्छा हो तथा कथित बुरा हो, भक्त जान लेता है कि ये कृष्ण की कृपा है और मेरे लिए अच्छा ही है। कृष्ण ने मेरे जीवन में मेरे भलाई के लिए ऐसी कृपा की है। तो साधारण तौर से क्या होता है, जब हमारे जीवन में कोई बुराई आती है तथा कथित बुराई, तो हम क्या सोचते हैं, साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, भगवान ने मुझे क्यों दुख दिया, इतना भगवान को दोषी ठहराता है। भगवान को नहीं ठहराता है दोषी, तो किसी और को ठहराता है कि इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, ये मेरे दुख का कारण है। और उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक प्रतिकूल भाव निर्माण हो जाता है, ईर्ष्या या द्वेष या क्रोध आदि उत्पन्न हो जाता है। फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते हम सोचने लगते हैं कि हम बदला लेंगे इस बात का, और इस तरह से हमारे चेतना का पतन होने लगता है। तो ऐसे चेतना में हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आए भी, और आने तो वाले ही हैं, जब तक ये शरीर है और जब तक हम भौतिक संसार में हैं, कष्ट तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, दोषी ठहराना है तो केवल अपने आप को ठहराना चाहिए। ऐसे ब्रह्मा जी की भी प्रार्थना है ना प्रसिद्ध श्लोक में, श्लोक में, तो ये भी एक बहुत आवश्यक अनुकूल मनोवृत्ति है कि हम इन चीजों को भगवान की कृपा के रूप में समझें, किसी को दोषी नहीं ठहराएं और किसी के प्रति बुरा मन में नहीं सोचें। ऐसे बहुत अच्छी बात। और कौन से अनुकूल मनोवृत्तियां हैं, कोई उदाहरण? हाँ, तो त्रिणादपि सुनिचेन श्लोक, जो चार बातें महाप्रभु ने कही हैं, उनको हमें ग्रहण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। अन्यों को सम्मान देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। यह अनुकूल मनोवृत्ति है। तो ऐसी भावना हमारी रहेगी तो अवश्य हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अच्छा, अब चर्चा करते हैं प्रतिकूल मनोवृत्ति। प्रतिकूल मनोवृत्ति या जो मनोवृत्ति हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है, ऐसे कोई उदाहरण आप बताइए। हाँ, अन्यों के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाना या जमाने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, और कोई? अन्य भक्तों के प्रति ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये प्रतिकूल मनोवृत्ति है। और कोई उदाहरण? सुबह के कार्यक्रम में नहीं आना, नहीं, ये तो अभ्यास की बात है, हम अभी मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, राजनीति, ये राजनीति क्या चीज है, समझाइए जरा, क्या चीज है राजनीति, मतलब क्या? राजनीति नहीं खेलना भक्तों के साथ, इसका क्या मतलब है? कुटी नाटी, कपटी भाव नहीं रखना। कपटी भाव रखेंगे, सोचते कुछ, कहते कुछ, करते कुछ और, है ना? जानबूझ के एक चेहरा दिखाना लेकिन कुछ दूसरा ही करना, ये सब कपटी है। दूसरों के हानि के लिए कुछ कार्य करना, दूसरों की बुराई करना, है ना, ये सब चीज, मिथ्याचार। मिथ्याचार ये एक आचरण की बात है, अब इस समय हम मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो ये एक मनोवृत्ति, ठीक है, ये भी प्रतिकूल है। और कोई एक दो उदाहरण? मत्सर, वो ही द्वेष करना, ईर्ष्या करना, मत्सर जलना कि ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे हैं, ये इसको इतने श्लोक पता है, मुझे नहीं पता है, या इतने इसने इतने किताब वितरण कर लिए और मैं नहीं कर पाया, तो वो बस पार्टी ने ज्यादा किया, तू बस पार्टी के टायर के हवा में वो आगे नहीं जाए, है ना, ये प्रतिकूल। हाँ, अंतिम कोई एक सुझाव। हाँ, वैष्णव अपराध, वो तो हाँ मनोवृत्ति, मतलब वैष्णवों के प्रति बुरा सोच के फिर कुछ कह देना, सोचना भी अच्छा नहीं है वैष्णवों के बारे में बुरा, क्योंकि सोचने से वो बात जबान पे आएगी ही, जो बात मन में है उसे जबान में आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे भक्ति के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। तो ये एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम सब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में क्यों आए हैं बताइए? भक्ति करने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं यहाँ भक्ति करने आया हूँ, मैं शुभ भक्त बनने के लिए आया हूँ, भक्ति में प्रगति करने के लिए आया हूँ। तो जो भी प्रगति करने के लिए अनुकूल है वो मुझे करना चाहिए, और भक्ति करने के लिए जो प्रतिकूल है उसे मुझे त्यागना चाहिए। तो ये बारंबार यदि हम विचार नहीं करेंगे तो भक्ति में हमारी बाधाएं बहुत सारी आ जाएंगी। इसलिए ये वाक्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी भक्तों को ये चाहिए कि इस वाक्य को वो याद रखें हर दिन, कि हमारे लिए मनोवृत्ति कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इससे अमुक की चर्चा हो गई, अब आते हैं पहले श्लोक में। तो पहले श्लोक में से आपको कितने भक्तों को कंठस्थ है हाथ ऊपर कीजिए, प्राय सभी को, अनेक भक्तों को है। तो बिना देखे हुए किताब में आप ये श्लोक बोलेंगे कोई? हाँ, बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ कौन समझाएंगे शब्द भेद करके, कोई और? हाँ,
वाचो वेगम, जब अपने मालिक के वेग को, मनसा मन के वेग को, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध की वेग को, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा उदर और जननेन्द्रिय के वेग को जो सहन कर सकता है वो पृथ्वी पर शिष्य बना सकता
है। बहुत अच्छा। तो ये षड वेग है जो इन षड वेगों को वश में कर सकता है, इनको सहन कर सकता है, तो वो पृथ्वी भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उपदेशामृत की शुरुआत में ही। तो ये षड वेग है, वचो नहीं वाचो होना चाहिए, यहाँ वचो वेगम हुआ है। तो वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। हम सब परिचित हैं इन षड वेगों से, हर एक भक्त जीव इन षड वेगों से हैरान रहता है। जब हम इन षड वेगों से मुक्त हो जाते हैं तो सच्चे शांति की प्राप्ति करते हैं। लेकिन केवल षड वेगों के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? केवल इंद्रियों को वश में करना क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है? कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर षड वेगों का को दमन करना या इसको सहन करने की क्या महत्व है? जब षड वेगों को हम सहन नहीं करते हैं, जब हमारे मन और इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं, नियमित नहीं होती हैं, तो उस समय हम हमारे चित्त को भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं कर सकते। फिर हमारे विचार, हमारे कार्य वो सब इंद्र तृप्ति के संबंध में रहेंगे, कृष्ण के संबंध में नहीं रहेंगे। तो जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, इन षड वेगों का दमन नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति के पक्ष में भक्ति करने के लिए षड वेगों का दमन करना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ इंद्रियों का संयम कैसे किया जाए? यदि ऐसे है कि भक्ति करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है, तो इंद्रियों का संयम कैसे किया जाए? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कृष्ण भक्ति करके। कृष्ण भक्ति करते करते इंद्रियां वश में आ जाती है, षड वेगों का दमन होता है, और करते करते क्रमशः हम भक्ति में प्रगति करते रहते हैं, और एक ऐसी अवस्था आएगी फिर इंद्रियां वश में हो जाएंगी पूरी तरह से, और कृष्ण भक्ति में भी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में, पहले श्लोक के तात्पर्य में अनेक चीजें बताते हैं। चार चीजें हैं इस पहले श्लोक के तात्पर्य में। पहला है प्रायश्चित की चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य का दूसरा भाग है षड वेग और भक्ति से इनका निवारण कैसे किया जाए, इसका वर्णन यहां पे पाया जाता है। तीसरा भाग इस तात्पर्य का है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवृत्ति टीका का सारांश। अनुवृत्ति टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत के ऊपर लिखी है, और अंत में निष्कर्ष। तो प्रभुपाद जी के इस पहले श्लोक के तात्पर्य के ये चार भाग हैं। आपने सभी ने पढ़ा है ना, यू कितने भक्तों ने नहीं पढ़ा है पहले श्लोक और उसका तात्पर्य? हाथ ऊपर कीजिए। एक भक्त है केवल, ठीक है, दो है। तो आप कृपया आज ही इस उपदेशामृत के पहले तीन श्लोकों को पढ़िए, उनका तात्पर्य भी पढ़िए, ठीक है? इसलिए हम इस तात्पर्य को शुरुआत से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और एक घंटे में ऐसे आधे घंटे में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो केवल सारांश देंगे। अब प्रायश्चित की बात। तो प्रायश्चित के बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आप में से कोई बता सकते हैं? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद क्या है उसमें?
तुम जरा सोचो उठाओ, क्योंकि हाथी उस प्राचीन का क्या मतलब, जो जैसे जिस प्रकार हाथी स्नान करने जाता है, बाद में मिट्टी डालता है, तुम प्राचीन से क्या मतलब?
उसके पहले
चोर
चोर का उदाहरण दिया जाता है। क्यों, किस संदर्भ में चोर का उदाहरण दिया जाता है?
तीन बुद्धिमान
व्यक्ति, ठीक है। तो क्या तात्पर्य है इसका? तो प्रश्न ये है कि प्रायश्चित, यहाँ परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि यदि कोई अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा है तो वो प्रायश्चित क्यों करता है? प्रायश्चित का लाभ क्या है ऐसे व्यक्ति के लिए? क्योंकि जब वो प्रायश्चित करेगा, और क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो पुनः उसी गलत कार्य को कर बैठेगा। इसलिए इसका क्या लाभ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। और एक चोर का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले ये हम देखें, जब हमारी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, और पाप करके क्या मिलता है हमें, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, चाहे पृथ्वी लोक में हो, नरक में हो, अनेक यातनाओं को हमें सहन करना पड़ता है। तो नरक आदि यातनाएं ये सब हो जाते हैं, किस लिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां अनियंत्रित है। अनेक बार ऐसे होता है कि व्यक्ति जानता है कि ये पाप है, फिर भी कर करता है। कई लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं और अनजाने में कर देते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको पता नहीं होता पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, तो वो पाप कर बैठते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जानते हुए भी पाप करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो अपने आप को वो नियंत्रित नहीं रख पाते हैं और जानते हुए भी पाप कर बैठते हैं। वैसे प्रभुपाद जी ने तीन प्रकार के लोगों की बात की है, हम चौथे प्रकार के भी इसमें जोड़ सकते हैं। चोर, जब तक चोर की बात है तो चोर के उदाहरण क्या है कि एक चोर ऐसे होता है जो, कौन से तीन उदाहरण कौन बताएंगे, मैंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। चोर का उदाहरण दिया है ना प्रभुपाद जी ने, कौन बताएंगे। हाँ,
वो चोरी करता है और उसका दंड मिलता है, फिर वो और भी वो चोरी करता है, आने के बाद दंड मिलने के बाद फिर भी चोरी करता
है। चोर ऐसा है, बोलने से कोई करता है, अगर कोई किसको बोलेगा अभी हम चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो वो करता है। और दूसरा प्रकार रहता है जो चोरी करता है, दूसरा चोरी कर रहा तो पुलिस वाले उसको लेकर जाता है, वो देख के सुधर जाता है।
फिर भी चोरी करता है कभी। तो ये चार प्रकार के लोग ऐसे हैं जो सुनकर सीखते हैं, चोरी नहीं करना, देखो चोरी करना बुरा है, इसमें दंड मिलेगा, तो एक बार सुन के वो सुधर जाता है, वो बुरा काम नहीं करता, चोरी नहीं करता। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो सुन तो लेता है परंतु केवल सुनने से वो सीखता नहीं है, वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि कोई चोरी कर रहा है और चोरी करके उसको दंड मिल रहा है, जब मैं प्रत्यक्ष देखूंगा तब मैं सीख जाऊंगा कि चोरी करना ठीक नहीं है। तीसरे श्रेणी का आदमी वो है जो कहता है मैंने सुना तो है कि चोरी करना ठीक नहीं है, उससे दंड मिलता है, मैंने देखा भी है कि कोई चोर पकड़ा गया है उसको दंड मिलता है, परंतु जब तक मुझे दंड नहीं मिलेगा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो सुनने के बाद, देखने के बाद भी वो स्वयं चोरी करता है, पकड़ा जाता है, दंडित होता है, फिर सीख जाता है, फिर आगे चोरी नहीं करता है कि हाँ ये बहुत बुरा दंड मिला है अभी और नहीं करेंगे। और चौथे श्रेणी का आदमी कौन है जो अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखते, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी वही कार्य बार बार करते रहते हैं। तो अधिकतर लोग दुनिया में किस श्रेणी में है, चौथे श्रेणी में। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन से श्रेणी का है, पहला। जो पहले श्रेणी का व्यक्ति है वो सबसे बुद्धिमान है। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग इस दुनिया में चौथे श्रेणी के ही होते हैं। तो ये ऐसे क्यों है, चौथे श्रेणी के लोग अधिकतर क्यों होते हैं दुनिया में, जो सुनकर देखकर अनुभव करके भी पाप करते रहते हैं, क्यों, अनियंत्रित इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं इसलिए सुनकर भी देख कर भी अनुभव करके भी फिर जाके पाप करते हैं। तो इससे पता चल सकता है कि अनियंत्रित इंद्रियां हमारे लिए कितनी हानिकारक होती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ इस तात्पर्य में प्रायश्चित की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसे प्रायश्चित का क्या मतलब है। जब व्यक्ति बार बार प्रायश्चित करता है और पुनः जाके पाप करता है, और फिर उदाहरण दिए गए हैं चोर का, दूसरा है हाथी का स्नान। हाथी का स्नान का क्या उदाहरण है, कोई बता सकते हैं?
एक हाथी जाके नहाता है तालाब में, अच्छा से नहाता है, फिर बाद में आके अपना सिर से होकर मैदान पर चढ़ता है।
एक हाथी नदी में जाके अच्छी तरह से स्नान करता है, फिर बाहर आके मिट्टी में लोट लेता है तुरंत। तो फिर ऐसे स्नान करने का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है और फिर आके तुरंत पाप करता है, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं ऐसे प्रायश्चित का। तो ये चोर का उदाहरण है, जो सुनने के बाद भी अनुभव करने के बाद भी जाके चोरी करता है, ये हाथी का स्नान है। और इसके लिए प्रभुपाद जी और एक चर्च का उदाहरण देते हैं, गिरिजाघर का। क्या उदाहरण कोई बता सकते हैं?
हर रविवार को लोग चर्च में जाके कन्फेस करते हैं, फिर छह दिन के
बाद। जो ईसाई लोग होते हैं उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो हर रविवार को गिरिजाघर में या चर्च में जाते हैं और पादरी के सामने स्वीकार करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए पिछले हफ्ते में, और ऐसे पाप करने के बाद ऐसे वो मानते हैं कि हम इस पापों के फल से मुक्त हो गए, ये प्रायश्चित हो गया। और जब हम मुक्त हो गए तो आने वाले हफ्ते में फिर से हम पाप करेंगे और फिर रविवार को जाएंगे, फिर हम क्षमा याचना करेंगे, स्वीकार करेंगे कि हमने ऐसे ऐसे पाप किए थे। तो फिर क्या मतलब है ऐसे प्रायश्चित का? तो ये कर्मकांड के उदाहरण है। कर्मकांड के उदाहरण ही कर्मकांड के लिए एक ही उपमाएं हैं, दृष्टांत है कि जो कर्मकांड करते हैं वो ऐसे धार्मिक क्रियाओं को स्वीकार करते हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति या ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐसे सब चीजें हो सकती हैं। परंतु क्या लाभ है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम प्रशंति, स्वर्गलोक में जाने के बाद भी उनको वहां हमेशा रहने का मौका नहीं मिलेगा। भले वो लंबे समय तक रहे वहां, फिर भी उनको अंततः पृथ्वी लोक में लौट के आना ही पड़ेगा। तो क्या लाभ उसका? दूसरे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, वो ज्ञान कांड के संबंध में है, उपमाएं हैं। तो कर्म कांड करना भी ये व्यर्थ है। ज्ञान कांड जो निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं ऐसे लोगों की बात है, उनके बारे में उपमाएं दी गई हैं। स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन, इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कोई कह सकते बता सकते हैं? हाँ नहीं, हाँ बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किस संदर्भ में? स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन। बीमारी क्यों होती है? अधिकतर इसलिए होता है कि हम अस्वच्छ रहते हैं। तो स्वच्छता के नियमों का पालन करने से हम प्राय बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया की बीमारी जो है इंद्रियवृत्ति आदि से हम दूर कैसे हो सकते हैं, तपस्या करके। तो ये एक उदाहरण है। तो ज्ञान कांड के जो लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, परंतु क्योंकि उनके हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है, भले पापों के फल मिट चुके होंगे लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई है, इसलिए आगे चल के कभी भी वो पाप पुनः कर बैठते हैं। और उदाहरण वेणुगुण था, अभी बताइए क्या बोल रहे थे आप। बहुत अच्छा। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब ये वास्तव में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ये उदाहरण वहां से दिया है कि जहाँ परीक्षित राजा बात करते हैं, यह ऐसे छोटे छोटे बहुत वेणुकुल आदि होते हैं जो ऊपर ऊपर से जल तो जाते हैं जब दावागल होता है, परंतु जड़ से नहीं जलते हैं, इसलिए इसके बाद भी वो ऊपर फिर से उगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्मकांड, ज्ञान कांड आदि इन पद्धतियों का पालन करने से ऊपर ऊपर से ऐसे प्रतीत होता है कि सारे पाप नष्ट हो गए, परंतु पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो जड़ है पाप की, उस पाप का जड़ नष्ट नहीं हो चुका होता है, इसीलिए पुनः सही समय पर वो आगे पौधा प्रकट करता है जो हमारी पाप करने की इच्छा है, फिर व्यक्ति पाप कर बैठता है। तीसरा उदाहरण शराब का पात्र, तो बता सकते हैं। हाँ,
शराब के पात्र को गंगा जल से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता है, इसी प्रकार विशुद्ध चेतना को ज्ञान ज्ञान के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जा सकता।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस प्रकार से एक शराब का कोई पात्र हो, उससे हम जितना भी साफ करें थोड़ा बहुत शराब तो रहेगा ही, उसमें शराब का जो प्रभाव है वो तो रहेगा, वो अशुद्ध रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान कांड का पालन करने के बाद भी थोड़ी बहुत अशुद्धता व्यक्ति के चित्त में, चित्त की गहराई में अवश्य रहेगी, ये नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों ही कोई काम के नहीं है, लेकिन भक्ति, परीक्षित महाराज कहते हैं हाँ ये भक्ति ठीक है, जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्ष्णेन निहारम इव भास्करः। ये उदाहरण है सूर्य और कोहरा का, ये उदाहरण कौन बता सकते हैं? आप बताइए। अच्छी है,
सूर्य के उदित होने से पहले जो कोहरा छाता है उसे ये अंधकार सब नष्ट हो जाता है। सूर्य उदित नहीं हुआ है, कोहरा ही है, सारा अंधकार नष्ट होता है।
कैसे नष्ट होता है?
कोहरे, जो कोहरा सूर्य की किरणें,
किरणें और कोहरा अलग है। कोहरा क्या चीज है? धुंध, कोहरा है। कोहरे के कारण क्या होता है? अंधकार होता है, है ना? लेकिन सूर्योदय के पहले क्या होता है? सूर्य के आभास, हाँ सूर्य की किरणें आती हैं थोड़ी बहुत, सूर्य का उदय अभी तक नहीं हुआ है। सूर्य के उदय होने से थोड़े बहुत पहले ही सूर्य के किरणें थोड़े बहुत आ जाती हैं, तो उन किरणों से ही सूर्य के आभास मात्र से ही वो कोहरा नष्ट हो जाता है, और कोहरा नष्ट होने के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है, और जब सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है तो पूरा प्रकाश भर जाता है सब जगह। ठीक उसी प्रकार से भक्ति भी सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण या कृष्ण भक्ति का उदय जब व्यक्ति के हृदय में होता है तो उदय होने के पहले ही भक्ति के आभास मात्र से जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पूरी तरह से भक्ति करने की आवश्यकता भी नहीं है पापों को नष्ट करने के लिए, बल्कि भक्ति के आभास मात्र से वो सब हो जाता है जो कर्म कांड ज्ञान कांड से होता है। और जब सूर्य का उदय हो जाता है तो पूरी तरह से पाप करने की प्रवृत्ति भी जड़ से निकल जाती है। तो भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन यहां पर है, किस तरह से भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान कांड और कर्म कांड की तुलना में कोई बता सकते हैं? अभी जो चर्चा हमने की उसके आधार पर कौन बताएंगे? और कोई उत्तर दीजिए।
तुम्हारा पाप करने का जो इच्छा होती है वो नहीं होती पाप से,
तो तुलना कीजिए। एक और कर्म कांड और ज्ञान कांड है और दूसरी और भक्ति है, इन दोनों की तुलना कीजिए। अभी
जैसे हमने कोई पाप किया उसका प्रायश्चित किया तो फिर इच्छा रहेगी फिर से वो एक्टिविटी वो कार्य करेगी, लेकिन भक्ति
इसमें
ज्ञान कांड और कर्म कांड
ठीक है,
लेकिन भक्ति में भक्ति करते हैं तो फिर हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है नियमित हो जाती है तो फिर हम वो इच्छा
तो जब कर्म कांड ज्ञान कांड आदि करते हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है, केवल पाप नष्ट हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। लेकिन जब भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की तो पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ साथ ये पाप जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए ज्ञान कांड कर्म कांड भक्ति में श्रेष्ठ पथ कौन सा है? भक्ति। तो भक्ति करने से सारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं, और जब इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं तो फिर हम भक्ति और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये दोनों साथ साथ चलती हैं। शुरुआत करनी चाहिए भक्ति तरफ से, जब भक्ति की शुरुआत करें जब भले हमारे इंद्रियां उस समय नियंत्रित न भी हो, लेकिन भक्ति करते करते हमारी इंद्रियां वश में आ जाएंगी और कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़ती जाएगी, और ऐसे हमारा हृदय अंततः पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण प्रेम का उदय हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसके बाद अब प्रभुपाद जी षड वेगों का निवारण कैसे होता है भक्ति के द्वारा इसका वर्णन करने वाले हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि अभी 3 बज गए। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे दोपहर को, और पहले श्लोक के तात्पर्य का जो बचा हुआ भाग है उसकी चर्चा करेंगे और दूसरे श्लोक की चर्चा भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।